और आज का लेसन बेहद इम्पोर्टेंट लेसन है, और इसमें वो बातें हैं जो कि अक्सर औकात हम भूल जाते हैं। ऐसी बातें जो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं, और बदकिस्मती से बहुत जल्दी हमें भूल भी जाती हैं। लिहाजा इनको दोहराना, इनको बार बार इनका मुजाकरा करना जरूरी है कि हम इन बातों को रिपीट करते रहें। इसी वजह से हर जुमे को हमें ये सूरत पढ़ने को कहा गया है, और ताकि हम इन आयात को जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें रिवाइज हो जाए जहन में कि ये हमें क्या मैसेज देती हैं। बहुत डीप आयात है, बहुत सारे सबक है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला ने यहां पर भी एक किस्से से हमें कुछ समझाया। जैसे पहले बात हुई थी कि इस सूरत में चार कसस हैं, चार किस्से हैं, और आज हम तीसरा किस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इस किस्से में इल्म के फितने की बात आई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कहीं पर आप इसमें दौलत के फितने की बात देखेंगे, कहीं इल्म के फितने की, कहीं हुकूमत के फितने की, कहीं ईमान के फितने की, मतलब हर जगह पे फितनों की को एड्रेस किया गया कि इन फितनों से कैसे इंसान इनका मुकाबला करे। और इल्म का भी एक फितना होता है। देखिए, इल्म आजमाइश है। फितने का मतलब क्या? आजमाइश, इम्तिहान। फितना वो नहीं जो हम उर्दू में बोलते हैं कि बड़े फितना है, बहुत ही सी, वो नहीं है। अरबिक में फितना कहते हैं इम्तिहान को। तो इल्म भी एक इम्तिहान है कि अल्लाह ताला जिसको इल्म से नवाजता है, तो जैसे दौलत से नवाज के अल्लाह ताला इंसान को परखता है कि अब ये क्या करता है इस दौलत के साथ, इसी तरह इल्म को नवाज के भी अल्लाह ताला देखता है कि इल्म आने के बाद इंसान का रवैया, उसकी बातचीत, उसकी जहन कैसा बन जाता है। क्या इल्म आने के बाद इंसान में आजी आई या वो मुतकब्बिर हो गया। ठीक है, तो इल्म की भी एक पूछ है अल्लाह के यहाँ, इल्म का भी एक सवाल होना है अल्लाह ताला के यहाँ। और यहां पे हम देखेंगे कि बहुत बहुत बड़े इल्म वाले दो शख्सियात का जिक्र है। इल्म के पहाड़ हैं समझ लें, उनके समंदर हैं समझ लें, उनकी इल्म आने के बाद कैसी उनकी बातचीत थी, उनके कैसे किरदार था उनका, वो कैसी पर्सनालिटीज थी। तो देखना तो हमें आज है मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अक्सर आप फिरौन के साथ, बनी इसराइल के साथ आप पढ़ भी चुके हैं। सूरह बकरा में आप जा बजा सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम को देख चुके हैं कि वो अपनी कौम के साथ, एक बहुत बड़े अल्लाह के दुश्मन के साथ किस तरह से चलते हैं, कैसे उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन बिल्कुल आज डिफरेंट बात है, या आज बिल्कुल आप उनका एक अलग रूप देखेंगे मूसा अलैहि सलाम का। अब हम देखते हैं ये भी कि सूरह कहफ में जो दो किस्से आए हैं, एक तो असहाबे कहफ का और एक जुलकरनैन का। ये दो किस्से तो ठीक है कि मुशरिकीन ने मक्का ने, जैसे आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि उन्होंने यहूदियों से जाके पूछा था कि हम इनसे क्या सवाल करें, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे उस उन लड़कों के बारे में पूछें जो गार वाले थे, गार वालों का किस्सा पूछें, और उस ट्रैवलर का पूछें जिसने ट्रैवल किया था पूरी जमीन के ऊपर, दुनिया पे ट्रैवल किया, उसका पूछें। तो मुशरिकीन मक्का ने ये मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का तो नहीं पूछा था, फिर ये किस्सा क्यों आया, और बाघ वाला भी नहीं पूछा था। लेकिन आप देखिए, ब्रैकेट करके दो किस्से बीच में लाए गए, और दोनों तरफ वो किस्से हैं जो उन्होंने सवाल किए थे, जबकि ये जो मिडिल में दो किस्से हैं इनका सवाल नहीं किया गया था। तो हमें पता चलता है कि बाघ वाला किस्से में क्या है, माल का तकब्बुर, सरदारी का, अपनी हैसियत का, अपने स्टेटस का तकब्बुर है। جو کہ مشرکین مکہ میں بہت زیادہ تھا، تو ان کو سنائی گئی یہ بات. اور اب علم کے تکبر کی بات ہے، اور علم کس کے پاس تھا وہاں پہ؟ یہودیوں کے پاس، جو اپنے علم پہ بہت ناز کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں. ان کے پوچھے بغیر یہ قصہ بتایا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو باور کرایا جائے، ریئلائز کرایا جائے ان کو کہ دیکھو تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام اتنے علم والے ہو کے بھی کتنی عاجزی رکھتے تھے اپنے اندر، کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس یا ایک اور شخصیت کے پاس، علم والی شخصیت کے پاس وہ گئے اور ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ان سے زیادہ علم والے تھے، تو ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا. اور تم کیا کرتے ہو کہ تم ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم اپنے علم کے ساتھ عاجزی نہیں برتتے. ایک رسول آ چکا ہے، تم اس کے پاس جا کے اور حق کو نہیں قبول کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے ہی پیغمبر ہیں، دیکھو ان کو کہ ان کے اندر تو یہ تکبر نہیں تھا. اب پتا ہے یہودیوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو یاد رکھیں، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اگر اس کے ساتھ عاجزی ہو تب، اگر اس کے ساتھ عاجزی نہیں ہے اور اس کے ساتھ تکبر آ گیا تو یہ بہت بڑی آفت ہے، نعمت نہیں ہے پھر آفت ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم علم لیں تو ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا. تو یہ قصہ، اس کو کہتے ہیں موسیٰ اور خضر کا قصہ. گو کہ خضر یہ نام قرآن پاک میں نہیں آیا، اور یہاں پہ ہم خضر کہیں خضر کہیں، آپ کو پتا ہے یہ ایک ایسا نام ہے، ویسے اس کا مطلب ہے گرین، سر سبز و شاداب. اور یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا لقب تھا، اس لیے کہ وہ جہاں جاتے تھے، جیسے بنجر زمین پہ بھی جاتے تھے تو وہ گرین ہو جاتی تھی، ان کی اتنی برکت تھی. ان کے اس نام کی 10 پروناؤنسیشنز ہیں مختلف، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، تو سبھی ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ مفسرین نے لکھا کہ خضر صحیح ہے. تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ ایک قصہ ہے. اور یہ قصہ کیسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ کر رہے تھے، یعنی کچھ خطاب کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، سمجھ لیں یہ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے کون سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ بڑا علم والا کون ہے؟ تو جواب دیا میں. اب آپ نے اس جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ عالم، اللہ تعالی کو بہتر معلوم ہے، تو اس کی بجائے کہہ دیا میں. اب ایک طرح سے یہ بات صحیح تو تھی، اس لیے کہ موسیٰ اس وقت اللہ کے نبی زمین پر تھے، اور اللہ کے نبیوں کو جتنا علم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ پسند نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جو جتنے اونچے سٹیٹس کا ہوتا ہے نا، جو جتنا علم والا، جو جتنا مرتبے والا اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی خطا، چھوٹی سی بات بھی پکڑی جاتی ہے. ذرا سی آپ دیکھیں، آباسا ہوا تھا واللہ کیوں آئی تھی عبداللہ ابن مکتوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی تیری چڑھائی تھی کہ یہ اس وقت آ گئے جس وقت میں दूसरे सरदारों को पैगाम दे रहा हूं, उनको कुछ समझा रहा हूं। तो इस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने सरजनिश फरमाई कि इतनी सी तेवरी भी क्यों चढ़ी, तो फौरन सूरत उतर गई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितना बड़ा मकाम है ना, जितना बड़ा दर्जा है या जितना कोई इल्म वाला है, उससे एक्सपेक्टेशन भी उतनी है, उसका स्टैंडर्ड भी उतना ही हाई होना चाहिए। जैसे आप लोग अब कुरान के स्टूडेंट्स हैं, आपका कैरेक्टर, आपकी बातचीत, आपका अमल, आपके तौर तरीके डिफरेंट होने चाहिए दूसरों से। अगर आप और एक कुरान का इल्म ना रखने वाला बिल्कुल एक तरह के काम करते हैं, एक तरह का आपका रहन सहन, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, गुफ्तगु, हर चीज उसके बराबर है, तो आपने क्या पढ़ा, आपने इस इल्म से क्या फायदा उठाया। तो जैसे जैसे इंसान के पास इल्म आता है, उसके दर्जे ऊपर होते हैं, उसी तरह उसके अंदर एक चेंज भी आना चाहिए, उसी तरह उसको अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार, इखलाक, गुफ्तगु, हर चीज से उस पर पता चलना चाहिए कि उसके ऊपर असर है उस इल्म का। लिहाजा जब स्टैंडर्ड बुलंद होता है तो उतनी ही ज्यादा पूछ भी होती है इंसान की। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि मैं हूं, तो अल्लाह ताला को ये कलमा नहीं पसंद आया, उसी वक्त वही आई कि हमारा एक बंदा है जो आपसे ज्यादा इल्म वाला है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो हुक्म हुआ कि अपने साथ एक मछली ले ले, ये वो आपको बंदा मजमाल बहरीन में मिलेगा, यानी जहां पे दो समंदर जमा हो रहे हैं वहां मिलेगा। तो वो तो बहुत बड़ी जगह है जहां दो समंदर जमा हो रहे हैं, वहां पे कहां पे वो बंदा होगा। फरमाया एक मछली साथ ले लें अपने पास, तोशादान में, यानी अपनी टोकरी में, बास्केट में, जैसे आप रखते हैं फूड। तो जहां वो मछली जिंदा हो जाए, गुम हो जाए, वहां वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने एक पता बताया। अब यहां पर आप इस सारी बात को नहीं पाएंगे और सीधा आपको जो हम आज की आयात पढ़ेंगे, सीधा ऐसे लगता है जैसे एक सीन है आपके सामने कर दिया, मिडल ऑफ द स्टोरी के अंदर आपको रख दिया गया। ये भी एक तरीका होता है और बहुत पावरफुल तरीका है कि आपको बजाय शुरू से ये सारा बताने के, एक मिडल में लाके एकदम आपके सामने एक सीन खुला है, जिसके अंदर क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने एक नौजवान के साथ, गुलाम के साथ। एक्चुअली कौन है वो गुलाम या कौन है वो साथी जिनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, वो है यूशा बिन नून। वो आपके स्टूडेंट भी थे, आपके खिदमत गुजार भी थे, उनको उन्होंने साथ लिया और चल पड़े हैं। अब आपको एक बात बताने की है, आयात तो बहुत इजी है, अगर आप इनको पढ़ भी लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इनके जो डेप्थ में जाना है ना, वो बहुत जरूरी है। समझने की बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पहले आप खुद थोड़ा सा जहन में लेकर आए कि हैं कौन। मूसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जो पांच उलुल आजम पैगंबरों में से, यानी टॉप के टॉप मोस्ट जो पैगंबर है ना, वो फाइव है, उनमें एक मूसा अलैहिस्सलाम है, छोटी बात नहीं है। सेकेंडली, मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिनसे अल्लाह सुभाना व ताला ने गवारा नहीं किया कि मैं किसी को बीच में लाऊं इनसे बात करने के लिए, डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम से बात की है। सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो किताब अता फरमाई जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी। तौरात के बारे में आता है, अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी और एक ही दफा में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जो कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ी उम्मत को साथ लेकर आएंगे। तो सोचें कि अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम कितने महबूब है और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या वैल्यू है अल्लाह के यहां। موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر کے دکھایا تھا. اب وہ موسیٰ جب سنتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو وہ یہ نہیں آگے سے کہتے سو واٹ اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے سو واٹ میں کیا کروں, آئی ڈونٹ کیئر اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا. کیونکہ علم کا اگر انسان میں تکبر آ جائے نا تو وہ ایسے ہی کہتا ہے میں خود اتنا علم والا ہوں مجھے کیا. اب آپ سوچیں ٹاپ کے کسی اسکالر کو اپنے ذہن میں لے کر آئے جس کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں دنیا کے اندر اور اس اسکالر کو کہہ دیا جائے آپ سے بھی بڑے کوئی اسکالر ہیں جن کے پاس آپ کو جا کے علم لینا ہے, تو اگر تو اس کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرے پاس خود اتنا علم ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے جا کے علم لینے کی, ٹھیک ہے میرے پاس خود کافی ہے, آئی ڈونٹ کیئر مجھے نہیں فرصت اور نہ میں نے جانا. موسیٰ علیہ السلام ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پیروکار تھے, ان کے امتی تھے, ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہو گئے. مطلب ظاہر ہے معلم بھی ہوتا ہے ایک نبی اپنے امت کا, تو اتنے امتی ہیں ان کے لاکھوں جن کو لے کر وہ چلے تھے. اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد ان کی عاجزی کی انتہا دیکھیں, یہ ہوتی ہے علم کے بعد انسان جو عاجز ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے اس کا رویہ, کہ ان کی عاجزی دیکھیں کہ نو سیکنڈ کوسچن یا اللہ میں کیسے اس آدمی کو مل سکتا. یہ ہوتی ہے شان ایک ایسے انسان کی جو عاجز مزاج ہو, وہ ہمیشہ علم کا حریص رہتا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی, ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہائے میں کسی سے جا کے اب میں کسی سے سیکھوں, اب میں خود اتنے پائے کا رسول ہوں میں خود سب سے نیک ہوں اور میں اب جا کے سیکھنا شروع کر دوں, یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام اب چل پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا آتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے, اب میں اس لیے بار بار غلام نہیں کہہ رہی حالانکہ فتح سے مطلب ان کا غلام بھی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کہنے سے منع کیا, غلام کہنے سے منع کیا. یہاں پہ آ سکتا تھا اذ قال لعبدہ, لیکن عبد کہنا اپنے غلام کو منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نہ کہے یا عبدی یا امتی اے میری لونڈی یا میرے غلام, بلکہ کہو یا فتح اے میرے شاگرد یا نوجوان یا میرے خادم. کیونکہ فتح میں نا نرمی ہے, تو وہ کہتے ہیں اپنے ان ساتھی تھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں اور چلتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, میں نہیں پلٹوں گا میں نہیں پھروں گا نہیں یعنی رکوں گا میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں ان دو دریاؤں کے سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مجمع البحرین پہ وہ ملے گا بندہ, تو جب تک میں مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں او امدیہ حکم بھائی میں چلتا ہی رہوں گا برسوں مدتوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا حکم جو ہوتا ہے 80 سال کے لیے بھی آتا ہے, غیر معین مدت انفکسڈ ٹائم, جو ٹائم فکس نہ ہو یعنی میں چلتا ہی رہوں گا مدتوں چلتا رہوں گا, بہت لمبے عرصے کے لیے بھی آتا ہے. کتنی زیادہ کمٹمنٹ تھی ان کی کہ میں نے اب بیٹھنا نہیں ہے میں نے اب پلٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں اس بندے کو نہ پالوں جس سے میں نے علم حاصل کرنا. سبحان اللہ, چاہے اس کے لیے مجھے صدیوں چلنا پڑے مدتوں چلنا پڑے کئی حکم چلنا پڑے. یہ حکم یہ لفظ آیا ہے کہیں اور بھی نا 30th جز میں ولا بثین فیہا احقابا, وہ بھی حکم ہے نا جہنمیوں, اتنے حکم رہیں گے کئی حکم رہیں گے وہ جہنم کے اندر, تو یعنی مدتوں میں چلتا رہوں گا. इससे आप सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम की का एटीट्यूड क्या था इल्म लेने के मामले में। लापरवाही नहीं थी, एक कमिटमेंट के साथ, इतनी डेडिकेशन है कि मैं चलता ही रहूंगा। इससे उलमा कहते हैं कि इल्म हासिल जो करना चाहता है उसकी ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि उसमें कमिटमेंट हो। ये नहीं है कि लोग कहें हम कमिटमेंट करने से जी डरते हैं, हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहते। अगर कमिटेड ही नहीं है आप, अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन ही नहीं है तो आप इल्म कैसे हासिल करेंगे। और उनके अंदर ये तलब होना जबकि उनके पास खुद इतना ज्यादा इल्म है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब इंसान के पास खुद के पास होता है ना, एक तो बंदा वो है जिसके पास इल्म नहीं है तो वो कहता चलो जी मैं किसी से सीखने जाता हूं, एक बंदे पास खुद इतना इल्म है और वो फिर चल पड़ा है, इसके लिए बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर तलब है, उसके अंदर डेडिकेशन है। और ये सबक यहूद के लिए भी था ना कि तुम देखो तुम इस नबी के पास नहीं आते, तुम इनसे इल्म नहीं लेना चाहते, तकब्बुर करते, और तुम्हारे नबी कैसे थे। याद रखें दो लोग इल्म नहीं ले सकते, एक वो जो शर्म खाता है, दूसरा वो जिसमें तकब्बुर होता है। तकब्बुर वाला इल्म नहीं ले सकता, और एक जिसमें शर्म भी बहुत होती है ना कि हाय लोग क्या कहेंगे कि मुझे आता नहीं है, वो भी नहीं ले सकता। तो अब वो ये भी यहां से पता चलता है कि अपने जो साथी हैं, अपने खादिम हैं, उनको बता भी रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहां जहां पे मजमाल बहराइन है। इससे भी उलमा कहते हैं कि बाज दफा लोग अपने नौकर या खादिम को ये बताना पसंद नहीं करते कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको इतना वो समझते नहीं है इस काबिल, लेकिन उन्होंने बताया। और दूसरे ये कि कहां पे था ये मजमाल बहराइन, बाज कहते हैं मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जहां पे मिलते हैं, बाज ने कहा कहीं और बाहर के, अब जहां पे भी है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारी रिवायात है इसमें, उसमें जाने की जरूरत नहीं। मगर एक बात समझ आती है कि जहां एक समुंदर चलता जाए चलता जाए चलता जाए और जहां पे वो एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, तो इससे पता चलता है कि बहुत कोई दूर की जगह की तरफ इशारा है। एक समुंदर जाहिर है खत्म होना, दूसरा शुरू होना, तो ये सिंबलाइज करता है ना इस चीज को। और फिर ये बहुत एक जबरदस्त बात उलमा ने की कि सुभान अल्लाह, जहां दो समुंदर मिल रहे हो, तो दो समुंदर मिल रहे हो वहां वो मिलेंगे, और वहीं ये दो इल्म के समुंदर मिलेंगे। पानी के समुंदर मिल रहे हैं, वही जगह सूटेबल हो सकती है दो इल्म के समुंदरों के मिलने की भी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भी इल्म कोई कम नहीं और खदर अलैहिस्सलाम का इल्म भी कोई कम नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने यहां पे आजी दिखाई है, अगर उनके अंदर तकब्बुर होता तो वो कभी भी ये बात सुन के कि उनसे बड़ा कोई और इल्म वाला है कभी ना निकलते। और ये भी ये बात समझने की है कि देखिए इल्म के लिए इंसान के अंदर आजी जरूरी है। अगर हम ये समझ के कहीं पढ़ने के लिए आते हैं कि जी मुझे तो बहुत आता है, बाज दफा ऐसे लोगों से मैंने सुना है, बाज हमारे पास एडमिशन लेते हैं वो अपना आके तारुफ कैसे कराते हैं, मैं तो वैसे बहुत मुझे आता है, मैंने तो इतने कोर्स करे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी हुई हूं, मैंने तो इतनी तफसीरें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूं यहां पे भी देखती हूं। तो अगर आप इस तरह का जहन रखते हैं और सोचते हैं कि आपको इल्म आ जाएगा और आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। ऐसा इंसान क्या सीखेगा जिसमें इतनी एरोगेंस हो कि जी मुझे तो पहले ही बहुत आता है, मुझे तो पहले ही इतना कुछ इल्म है। तो यानी वो पहले बता रहा है कि मेरा बर्तन तो पहले भरा हुआ है, भरे बर्तन में क्या आएगा, ठीक है, बर्तन को खाली करना पड़ेगा ना। वो जो बता रहा है कि मेरे पास इतना इल्म पहले ही है, और इसी तरह ग्रुप्स में जाके बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी बहुत इल्म है, यानी अपने इल्म का रोब झाड़ना, अपने इल्म का तकब्बुर। तो ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जब इंसान के पास जितना इल्म आता रहता है, आता जाता है, उसके अंदर आजी आती है अगर वो वाकई इल्म हासिल करना है। और अगर इल्म नहीं है ना, सिर्फ जहालत ही है, तो फिर तकब्बुर आएगा। जो उलमा कहते हैं, जो इंसान ये समझता है कि उसको सब कुछ आ गया, समझ लें कि वो जाहिल है, उसकी जहालत है उसके अंदर। यकीन जाने मैं अभी तक भी पढ़ती रही हूं, इस साल तक भी मैंने कभी अपने किसी टीचर को नहीं बताया कि मैं कुछ पढ़ाती हूं, या मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, या मैं कोई इदारा चला रही हूं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे ही हमेशा पढ़ा है कि जैसे आज मैं पहली दफा आपसे पढ़ने के लिए आ रही हूं, किसी को भी नहीं पता था। तो ये जरूरत नहीं होती कि हम जब कहीं जाएं तो हम वहां पे एडमिशन लेते हुए अपने पहले इल्म की धाक बिठाएं और हम ये बताएं कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, और मैं तो बस ऐसे ही चलते फिरते जरा आपको चेक करने आ गई, समझ जाए कि आपने कुछ नहीं सीखा हुआ। फिर तो अब ये मूसा अलैह सलाम की कमिटमेंट देख लें। अच्छा, फिर कितना अरसा, ये नहीं कि अच्छा अब मैं इतना अरसा अपना लगा दूं, मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर दूं, मैं अपने इतनी पता नहीं कितना टाइम लगे। इसका मतलब है कि उनको ये नहीं पता कि कहां जाके उनको वो मिलेंगे, खदीर अलैहि सलाम कहां पे मिलेंगे, कितना अरसा लगेगा। इसीलिए वो कहते हैं चाहे मैं चलता रहूं, मैं पलटूंगा नहीं जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं, और चाहे मुझे इसमें चलते रहने में मुद्दतें गुजर जाए। और आज इल्म के हरीस का हाल ये है कि अभी एडमिशन भी नहीं लेते, कहते पहले हमें बताओगे ये खत्म कब होना, खत्म होने का बताओगे तो फिर हम आएंगे। यानी उनको पहले ये कि इख्तिताम का अभी शुरुआत हुई नहीं है, खत्म की पहले फिक्र। मूसा अलैहि सलाम ने तो नहीं ये फरमाया कि मेरे तो ये कब सफर खत्म हो, कब मैं कहूंगा, कब आऊंगा, हाय मेरा तो इतना वक्त चला जाएगा, कितना वक्त मुझे लगाना पड़ेगा। और इमाम बुखारी कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने इल्म की खातिर सफर किया, और उनके बाद फिर आप मुहद्दिसीन, आप आइम्मा कराम उलमा को देखें, उन्होंने कितने सफर किए इल्म के लिए। तो वो देखते ही किसी को तब थे कि जब किसी ने सफर किया होता था इल्म के, कि पहले ऐसे तो नहीं है आराम से जैसे आप घर में अपने कंफर्ट में बैठ के पढ़ते हैं, ऐसी तो सहूलियात भी नहीं थी। एक एक इल्म के लेने के लिए, कहीं एक एक हदीस लेने के लिए उन लोगों को कितने सफर करने पड़ते थे। अब आप ये देख लें कि मूसा अलैहि सलाम भी अपने घर से निकले, अपनी कौम से निकले, अपने काम सारे छोड़ के निकले। नबी के पास भी बहुत काम होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम ही बिजी हैं, लेकिन हमें लगता है कि घर बैठ के भी हम वक्त नहीं निकाल सकते। वो एक नबी होके सफर कर रहे हैं इल्म के लिए। इससे पता चलता है कि इल्म के लिए सफर करना एक नबी का भी शेवा। और बड़े बड़े उलमा के तो तरीके हैं ही इल्म के लिए मेहनत करना, मुशक्कत करना, कष्ट उठाना, इल्म के लिए अपने आप को खपाना, ये इसमें पता चलता है। और आगे देखेंगे आप, इसमें उनको थकावट भी हो जाती है, भूख भी लग जाती है, लेकिन चलते जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि छोड़ो परे इस काम को, इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत, वहां पर बैठ के भी तो मैं सीख ही रहा था, नहीं। तो जब आप तालिब इल्म बनते हैं ना, तालिब इल्म, तालिब इल्म का मतलब क्या होता है, इल्म को तलब करने वाला। कितनी तलब है आपके अंदर, आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है, आप भी तो तालिब इल्म है। जैसे मूसा अलैहि सलाम इल्म की तलब के लिए निकल रहे थे, आप बताएं जो आप तालिब इल्म हैं, आप किस किस्म के तालिब इल्म हैं? क्या आपके अंदर भी ऐसी कमिटमेंट है? क्या आपके अंदर भी ऐसी मेहनत करने का जज्बा है? इससे पता चलता है कि इल्म बगैर मेहनत के नहीं हासिल हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत उठानी पड़ती। अल्लाह ताला चाहते तो खदर अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही भेज देते मुझे आपको वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको निकलने की और जगह जगह फिरने की, उनको ही बुला देता हूं यहां। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये ही है इल्म का रास्ता कि इसमें मुशक्कतें आती हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि बस ना जरा सा भी तिनका भी हमें दोहरा ना करना पड़े और बस इल्म आ जाए, दिमाग में उंडेल दिया जाए मेरे, बस मैं कुछ भी ना करूं, एक क्लास ले लिया करूं, उसके बाद किताबें बंद करके रख दूं और इल्म मेरे दिमाग में आ जाए। फिर उसके बाद कहते हैं हमें तो याद ही नहीं रहता, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल कैसे ना लगे, आपने कितनी मेहनत की, मुझे भूल जाता है। आपने उसको रिटेन रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए कितना वक्त लगाया, बात तो ये है। उसके बाद फिर शिकायतें किस बात की अगर हमने वक्त नहीं लगाना। तो मूसा अलैहि सलाम भी अपना घर बाहर छोड़ के निकले थे, अपनी फैमिली को छोड़ के निकले हैं, अपने और काम छोड़ के निकले हैं। कमिटमेंट, इल्म के लिए कमिटमेंट चाहिए, और इल्म का रास्ता मुशक्कत का रास्ता है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना मैं आपको बता रही हूँ, तफसीर में नहीं मिलेंगे आपको, प्लीज इनको लिखते जाएं। जो आप बेशक इनकी आयतों का जो मैं आपको सिंपल सिंपल एक माना बता रही हूँ बेशक ना लिखें, जो कुछ से सबक है ना वो जरूर लिखें। अच्छा अब वो चले, फलम्मा बलगा मजमा बैनी है, तो जब वो दोनों पहुंचे, मजमा बैनी मा, इन दो बैनी ही मा क्या मतलब, क्या दोनों समुद्रों के दरमियान, जहां पे मजमा जहां जमा होने की जगह थी, उनके दरमियान वहां पे पहुंच गए। और फलम्मा का माना भी ये होता है कि बड़ा अरसा, अब जैसे कहते हैं ना इवेंचुअली आखिरकार, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब काफी अरसा लंबा अरसा चलते रहे फिर आखिरकार वो वहां पहुंचे। तो आखिरकार जब वो पहुंचे वहां जहां पे दो समुद्र मिल रहे थे, नासिया होता हुआ, तो वो दोनों भूल गए अपनी मछली को। अब वो जो मछली जिसको अल्लाह ताला ने बताया था कि जहां पे ये जिंदा हो जाएगी वहां पर ए मूसा आपको मिलेंगे, तो उन दोनों को भूल गया। फतह सबीला हु फिल बहरी सौराबा, तो उस मछली ने समंदर के अंदर सबीला हू आया, अपना रास्ता बना लिया। सबीला फिल बहर भी कहा जा सकता था, तो सबीला हू से मतलब क्या, इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसको उसका रास्ता बताया हुआ था कि कहां पे तुमने जाना। वो वहां निकल के वो जिंदा होके वहां चली गई। आप सुभान अल्लाह, आप देखिए एक भुनी भी मछली है और वो जिंदा हुई है, और ये इटसेल्फ कितनी बड़ा मौजजा है कि वो निकली और उसने एक रास्ता बना लिया समंदर के अंदर, वो बास्केट से उछली और निकली। लेकिन उस वक्त यूशा जो थे, यूशा अलैहि सलाम, उन्होंने इस मछली को निकलते हुए देखा था, पानी में कूदते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहि सलाम आराम कर रहे थे, दोनों वहां पे एक चट्टान के पास टेक लगा के जरा रेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे उस्ताद उठेंगे, जब मेरे मालिक उठेंगे, तो मैं उस वक्त उनको बताऊंगा। जब वो उठे तो दोनों चल पड़े और भूल गया उनको बताना। लेकिन मैं दोनों की तरफ क्यों कहा गया दोनों को भूल गया, इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम को भी भूल गया उनसे पूछना। अब देखिए ना, एक बंदे ने मसलन आप अपने बच्चे को कोई जरूरी कागज देते हैं कि भाई ये बेटा संभाल के रखना, अब कहीं उतरे तो अब आप फिर पूछेंगे रख लिया ना तुमने, फिर कहीं आगे जाएंगे है ना तुम्हारे पास, बार बार आप पूछते हैं ना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब वहां से उठे हैं तो मूसा अलैहि सलाम को भी पूछना भूल गया कि वो मछली तो ले ली है ना साथ, तो उनको भी भूल गया बताना। और मछली ने अपने एक सुरंग सी बनाई है पानी के अंदर और एक अजीब ही तरीके से वो उसमें चली गई। और ये देखें भी एक मुश्रिकीन मक्का के लिए भी एक मैसेज था कि अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा कर देगा, अगर मछली को जिंदा कर सकता है तो तुम्हें भी जिंदा कर सकता है मरे हुए को। फलम्मा जावज़ा, तो जब वो आगे बढ़े, यानी उस जो उनका जहां पे उनको मिलने थे वो हज़रत अलैहि सलाम, वहां से आगे बढ़ गए। قال علی فتح, तो उन्होंने कहा, किसने कहा, موسی علیہ السلام ने अपने खादिम से कहा, آتینا غدانا, हमें हमारा नाश्ता लेकर आओ। अच्छा अब ये भी कहा जाता है बाज़ तफसीरों में कि वो मछली से खा भी रहे थे, लेकिन वो जब उस वक्त से जिंदा होकर वो चली भी गई। لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, अलबत्ता तहकीक हमें पहुंची है हमारे इस सफर की वजह से, बड़ी थकावट हो गई है हम, उलमा कहते हैं कि देखो जिस वक्त तक वो यहां भी नहीं पहुंचे थे, जो उनका जो मीटिंग पॉइंट था, जिस जगह पहुंचना था, वहां तक तो थकावट नहीं, जब उससे आगे निकल गए, यानी जो उनका मकसद था उससे आगे निकल गए, तो तब थकावट भी महसूस होने लगी। तो उनको अब थकावट ही, तो कह रहे हैं कि हमारा खाना लेकर आओ। अच्छा, इससे हमें पता भी ये चलता है कि जब हम कहीं सफर पे निकले, चाहे वो क्या नाम है, इम्मी सफर है या वैसे सफर में निकले, तो अपने साथ आप कुछ खाना वगैरह अपना ज्यादा साथ ले जा सकते हैं, ले जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जब वो उन्होंने ये कहा, एक और बात है यहां पे, उलमा कहते हैं कि देखिए एक इसमें और सबक है कि तालिबे इल्म के लिए ना दो चीजें हैं जो इल्म के रास्ते में उसके लिए प्रॉब्लम बनती हैं, एक निसियान और एक नसबा। एक है ना नसिया और एक नसबा है, भूल गए और थकावट। यानी तालिबे इल्म को इन चीजों से वास्ता पड़ता है इल्म के रास्ते पे, इन रुकावटों को उसको ओवरकम करना होता है। कि जैसे मसला ना कि आज तो मैं थक गई हूं, आज तो मैं क्लास में ही नहीं आ सकती, छोड़ो आज क्लास को बाद में ले लूंगी, रात को बड़ी देर से सोई थी, तो इस रास्ते में ये चीज एक रुकावट है, थकने की वजह से काम छोड़ नहीं देना। दूसरा भूल जाता है, मुझे तो भूल ही जाता है, लिहाजा मैं कर ही नहीं सकती, हमें तो याद ही नहीं रहता। तो ये भी इंसान के इल्म के रास्ते पे चलने में उसके लिए रुकावट बनती।